प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और मोहम्मद अली कुम्मी का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में दाइश के पतन की शुरू हो चुकी उल्टी गिनती के बारे में चर्चा करेंगे।
आतंकी गुट दाइश के नियंत्रण वाले अनेक शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को मुक्त कराने में इराक व सीरिया की सेनाओं और स्वयंसेवी बलों की सफलता के बाद इन दोनों देशों में दाइश की समाप्ति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सैनिक पहलू से इस तकफीरी आतंकी गुट की पराजय की तस्वीर बड़ी तेज़ी से पूरी होती जा रही है। मोसुल से लेकर लेबनान व सीरिया की सीमावर्ती पहाड़ियों तक दाइश की निरंतर पराजय ने इस आतंकी गुट के पतन की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है। लेबनान के अन्नाहार समाचार पत्र ने हाल ही में एक रिपोर्ट में दारुज़ूर में सीरियाई सेना के पहुंचने को दाइश के साथ लड़ाई में बशार असद की एक बड़ी अहम सफलता और इस गुट के लिए हानिकारक वार बताया है। यह शहर फुरात नदी के तट पर स्थित है और तेल का एक अहम केंद्र समझा जाता है। दारुज़ूर पर नियंत्रण करके दाइश ने आय का एक मूल्यवान स्रोत हासिल कर लिया था।
अन्नहार समाचार पत्र के टीकाकार ने सीरियाई सेना की विजय को एक नया रणनीतिक परिवर्तन बताया है और कहा है कि यह परिवर्तन पूरे सीरिया में आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लेबनान के अलबना समाचार पत्र ने भी क्षेत्र में दाइश की पराजय के प्रभावों के एक अन्य पहलू की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि दारुज़ूर का परिवेष्टन समाप्त हो जाने के बाद सीरिया के बारे में कई यूरोपीय देशों की नीतियों में परिवर्तन देखने में आया है और अब वे बशार असद के सत्ता से हटने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
इस बीच ज़ायनी शासन के नेता, समीक्षक और संचार माध्यम जो बशार असद की पराजय के संबंध में अपनी आशाओं को बर्बाद होता देख रहे हैं, अब उनकी और सीरियाई सेना व उसके घटकों की विजय की बात करने लगे हैं। अलबना ने लिखा है कि यह घटना, जिसे रूस के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री ने एक अहम विजय बताया है, आतंकी गुटों के समर्थकों और उन्हें अस्तित्व प्रदान करने वालों को बहुत भारी पड़ेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दारुज़ूर शहर को स्वतंत्र कराने में सीरियाई सेना की सफलता के बाद बशार असद के नाम बधाई संदेश में इसे एक रणनीतिक विजय बताया और कहा कि यह घटना आतंकियों से पूरे सीरिया को मुक्त कराने के मार्ग में अहम कदम है।
इन सफलताओं के बाद यूरोपीय सरकारों, विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस ने घोषणा की है कि बशार असद का सत्ता से हटना सीरिया में शांति प्रक्रिया के आरंभ के लिए पूर्व शर्त नहीं है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने अपनी बगदाद की यात्रा में यह दर्शाने के लिए कि फ्रांस की सरकार अब सीरिया में कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेगी, एक अहम बिंदु की ओर संकेत किया और कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद के सत्ता में रहने या हटने जैसी फ्रांस की कोई पूर्व शर्त नहीं है और पेरिस इस बारे में सीरियाई जनता के फैसले का समर्थन करेगा।
ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी संबंध में अपने देश के रुख की घोषणा करते हुए कहा कि पहले हम पूर्व शर्त के रूप में कहते थे कि बशार असद को सत्ता से हटना होगा, लेकिन अब हम कहते हैं कि उनका सत्ता से हटना सत्ता के हस्तांतरण की राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए। अलबत्ता फ्रांस के अधिकारियों ने कुछ ही दिन बाद कहा कि शांति प्रक्रिया में बशार असद का कोई स्थान नहीं होगा और इसी प्रकार के विरोधाभासी बयानों से पता चलता है कि वे पिछले 6 साल में इराक व सीरिया में अपनी नीतियों की विफलता को स्वीकार कर रहे हैं। वे पहले सीरिया के बारे में इस तरह की परिस्थिति की कल्पना भी नहीं कर रहे थे।
पश्चिम वालों का सोचना था कि वे 3 महीने से भी कम समय में बशार असद की सरकार को गिरा देंगे और फिर दमिश्क में ऐसी सरकार को सत्ता में पहुंचाएंगे जो पश्चिम व ज़ायोनी शासन की कठपुतली हो और प्रतिरोध के मोर्चे को समाप्त कर दे। सीरिया संकट के अस्तित्व में आने और उसमें अमेरिका व यूरोपीय देशों की भूमिका पर एक सरसरी नज़र डालने से दाइश के खिलाफ सीरिया व इराक की सेना और स्वयंसेवी बलों की विजय के महत्व को अच्छी तरह से समझा जा सकता है।
वर्ष 2003 में इराक पर अमेरिका के हमले के समय ही दाइश के वजूद की बुनियाद पड़ गई थी। अमेरिका को आशा थी कि वो इस तकफीरी व आतंकी गुट का पोषण करके इराक में अशांति को अपने हिसाब से नियंत्रित करेगा और इस देश में अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। वास्तव में इराक में वातावरण को अशांत बनाने और इस देश के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों पर तकफीरी व आतंकी गुटों के कब्जे से बगदाद की सरकार को एक ऐसी सरकार बनाने की कोशिश की गई कि जो केवल सुरक्षा स्थापित करने और अशांति से मुकाबला करने में अपनी पूरी कोशिश और वित्तीय संसाधन लगा दे। वो ऐसी सरकार हो जो अपनी शांति व सुरक्षा के लिए अमेरिका की मदद पर निर्भर हो।
उत्तरी अफ्रीका के पीड़ित देशों में जनता के आंदोलनों ने अमेरिका को एक नया अवसर उपलब्ध करा दिया कि वह बृहत्तर मध्य पूर्व या ग्रेटर मिडल ईस्ट की अपनी योजना को, जिसे उसने वर्ष 2003 में इराक के अधिग्रहण के समय आरंभ किया था, पुनः आगे बढ़ाए। अमेरिका और नेटो में उसकी घटकों ने इस बात की कोशिश की कि अत्याचारी शासकों के खिलाफ अरब देशों की जनता के आंदोलनों का रुख मोड़कर उन्हें उत्तरी अफ्रीका व मध्य पूर्व में अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें।
मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थन वाली मोहम्मद मुर्सी की सरकार का तख्ता पलट दिए जाने से इस देश के युवाओं की क्रांति विफल हो गई। लीबिया में कज़ाफी की सरकार के अंत के बाद ये देश कई हिस्सों में बंट गया और तकफीरी व आतंकी गुटों की गतिविधियों के मैदान में बदल गया। अलबत्त सीरिया की स्थिति अन्य संकटग्रस्त अरब देशों से भिन्न रही। ये देश ट्यूनिशिया, मिस्र और लीबिया से अलग था और मध्य पूर्व के अहम क्षेत्र में इनमें से किसी भी देश की रणनीतिक स्थिति सीरिया जैसी नहीं थी। सीरिया की रणनीतिक पोजिशन इस बात का कारण बनी कि क्षेत्र और क्षेत्र से बाहर की शक्तियाँ इस देश में व्यापक संकट उत्पन्न करने के लिए विद्रोहियों व आतंकी गुटों का समर्थन करें।
यूरोपीय देश सोच रहे थे कि सीरिया की कानूनी सरकार के विरोधियों का समर्थन करके और विदेशों में रह रहे बशार असद के विरोधियों को एकजुट करके वे 3 महीने से भी कम समय में इस देश की कानूनी सरकार को गिरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीरिया प्रतिरोध के मोर्चे के केंद्र में स्थित है और उसके ईरान व हिजबुल्लाह जैसे सशक्त और निष्ठावान समर्थक हैं। दूसरी ओर सीरिया में रूस के भी अनेक हित हैं जो इस देश में यूरोपीय सरकारों और उनके क्षेत्रीय घटकों द्वारा संकट उत्पन्न किए जाने के कारण खतरे में पड़ गए थे। लाज़िकिया में तर्तुस बंदरगाह भूमध्य सागर में रूस का अंतिम सैन्य ठिकाना है, जो बशार असद की सरकार गिरने की स्थिति में रूस के हाथ से निकल जाता और मध्य पूर्व में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं बचता।
इस प्रकार राजनीतिक, सुरक्षा व भौगोलिक परिस्थितियां सीरिया संकट में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के गठन का कारण बनी। इन हालात में यूरोपीय संघ, विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस, क्षेत्र से बाहर के खिलाड़ियों के रूप में बशार असद के विरोधी पाले में चले गए और सीरिया की कानूनी सरकार को गिराने की कोशिश करने लगे। लेकिन सीरिया की सरकार पर कड़े प्रतिबंध लगाकर और सरकार विरोधियों का भरपूर समर्थन करके भी वे अपना ये लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। उनकी इस नीति का परिणाम सीरिया में तकफीरी आतंकी गुटों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ जाने के रूप में सामने आया और ये गुट सीरिया व इराक में अपने पश्चिमी आकाओं के अधीन बाकी नहीं रहे, बल्कि खुद उन्हें भी आंखें दिखाने लगे। इस तरह वे यूरोपीय सरकारों के लिए भी खतरा बन गए।
यूरोप वाले सोच रहे थे कि तकफीरी आतंकी गुटों को मजबूत बनाकर सीरिया में और उच्च स्तर पर मध्य पूर्व में अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे, लेकिन व्यावहारिक रूप से जैसे जैसे सीरिया का संकट लंबा खींचता गया, वैसे वैसे यूरोप में आतंकवाद के खतरे में वृद्धि होती चली गई, यहां तक कि यूरोप को दाइश के विरुद्ध गठजोड़ बनाने पर विवश होना पड़ा। यही कारण है कि यूरोपीय देशों के पास क्षेत्र में अपनी नीतियों पर पुनर्विचार के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इराक और सीरिया में तकफीरी आतंकी गुटों से लोहा लेने वाला एकमात्र बल प्रतिरोध का मोर्चा है, जिसमें इराक व सीरिया की सेनाएं, स्वयंसेवी बल और इस्लामी गणतंत्र ईरान शामिल हैं। अलबत्ता दाइश का पतन शुरू होने का मतलब यह नहीं कि क्षेत्र में अमेरिका व यूरोपीय सरकारों के षड्यंत्र खत्म हो गए हैं, लेकिन अब वे प्रतिरोध के मोर्चे की अनदेखी नहीं कर सकते।